साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से जिला समन्वयक दिनकर पातुकर आज हमारे साथ सांख्यिकी दिवस के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही है जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नागपुर में पदस्थ है और साथ ही साथ हमारे साथ अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय सचिव एवं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के नागपुर प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सर जी।
नमस्कार।
नमस्कार।
नमस्कार। जैसा कि अपने भारत वर्ष में सांख्यिकी दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, 29 जून को भारत द्वारा हर साल देश भर में मनाया जाता है और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी डाटा प्रोसेसिंग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन जिसे कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में मैंने काम किया है और केंद्रीय कार्यालय है वहाँ के सम्मत विधायक यानी सहायक ग्रेड वन जिसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड वन प्रशांत भगत जी हमारे साथ में है। तो जो मोबाइल वाणी के जो हमारे सुनने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र में भी इसका प्रसार प्रचार हो रहा है, मोबाइल वाणी के जरिए हम ये लोगों को बताना चाहेंगे सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य। तो हमारे साथ प्रशांत जी उनसे मैं पूछूंगा कि सर हमारे सब ग्राहकों को बताइए कि सांख्यिकी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
सांख्यिकी दिवस ये हमारे सांख्यिकी के जनक रहे हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो एक जाने माने अर्थशास्त्री और थे जिनका जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था। उनके जो योगदान के लिए 5 जून 2007 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये 29 जून जो महानोबिस दिन का जन्मदिन होता है उसको सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का एक आदेश जाहिर किया था और तब से हर वर्ष 29 जून ये पूरे भारतवर्ष में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष हम ये 15वां सांख्यिकी दिवस मनाने जा रहे हैं और इसका प्रमुख कार्यक्रम मिनिस्ट्री में होता है, सांख्यिकी मंत्रालय में होता है। और अभी जो कि ये कोरोना कोविड की महामारी के चलते आजकल ये कार्यक्रम ऑनलाइन प्रोग्राम ही करते हैं, तो ये एक प्रमुख उद्देश्य है इसका।
अच्छा प्रगत जी, अच्छा बताया। हमारे श्रोताओं को ये भी आप समझेंगे कि सांख्यिकी विभाग का मुख्य लक्ष्य क्या है।
सांख्यिकी विभाग ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश के जैसे आप जानते हैं कि देश के आजादी के पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो पंचवार्षिक योजना का जो घोषणा की थी तथा योजना आयोग की भी घोषणा की थी और जो अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो 1950 में जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस जो है उन्होंने 1950 में एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले ऑर्गेनाइजेशन कहा करते थे अभी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना की थी 1950 में और उसके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत विविध सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे कराया जाता है तथा इस सर्वे के रिपोर्ट पर ही विविध पंचवार्षिक योजना का अमल करके देश की उन्नति में प्रमुख योगदान करता आया है। ये प्रमुख उसका सांख्यिकी विभाग का ये रहा है। आप जानते हैं कि एनएसएसओ ये पहले योजना आयोग के अंतर्गत आता था पर 15 अक्टूबर 1990 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यह स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की गई और उसी के अंतर्गत एनएसएसओ काम करता है।
सही में बिल्कुल आपने सही बताया क्योंकि मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में भी वहाँ पे कार्य कर चुका हूँ, तो इसके ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है तो श्रोताओं को ये भी समझाइए आप कि देश की प्रगति में एनएसएसओ की भूमिका क्या है।
एनएसए की प्रगति में इसकी भूमिका यह है कि अवश्य एनएसएसओ की प्रमुख भूमिका है विविध दौर के रिपोर्ट, जैसे आप जानते हैं कि ये एनएसएसओ का जो सर्वे होता है नेशनल, अभी जो उसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है यानी सांख्यिकी विभाग ये कहा जाता है, ये पहले एनएसएफ के विविध परियोजना का, भारत सरकार की जो विविध परियोजनाएं होती है उसको अमल लाने में ये काम करती है।
अच्छा, और अच्छा,
हाँ इसका ये मेन है। हाँ हाँ
बोलिए बोलिए।
हाँ ये राष्ट्रीय इसकी प्रगति बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि एनएसएसओ में पहले जो काम होता है, एनएसओ का जो काम होता है ये दो विभागों में डाटा डिवाइड किया जाता है।
जैसे पूछने वाला था आपको डीपीसी पूरी है, मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, नागपुर में भी सिमेंद्री हिल में इसका कार्यालय है, इसका मुख्यालय जैसे की कलकत्ता में बताया गया है। तो उस समय मैं भी ऑफिस में जब 2012 में मेरी सेवानिवृत्ति हुई तो आखिरी के दिन मजे की बात थी कि उस दिन मेरा प्रमोशन हुआ था। हम अपने कार्यालय में जो है नेशनल सैंपल में मुझे सभी बातें याद आ रही कि वहाँ पे काफी एक्टिविटी भी हुआ करती थी, जैसे हिंदी दिवस है, भाषण प्रतियोगिता है, स्पोर्ट डे है, इसे हंसी खुशी के वातावरण में कार्यक्रम होते हैं। जो कार्यकर्ता है जैसे हम वहाँ के श्रीमती जागृति दवे है, भारतीय संगम निरक मैडम है, विनायक मेश्राम जी है, अविनाशी सोहनी है, मालतीबाई लांगेवार जी है, विद्यापति डांगे मैडम है, ये सभी लोग बड़े सक्रियता से काम करते हैं। आज सीनियर सांख्यिकी अधिकारी के रूप में वहाँ पर कार्यरत है, स्पोर्ट्स क्लब भी चलाया, जब ईश्वर झाड़े भी वहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब चला देते, एक हंसी खुशी का वातावरण रहता था और पूरा 100% काम देके लोग इस प्रकार से काम करते। मैं अपने श्रोताओं को मैं आपके द्वारा ये भी समझाना चाहता हूँ कि सम्मत विधायक केंद्र डीपीसी तथा क्षेत्र संसार या प्रभाग त्रिपुरी ये मुख्य इनका कार्य क्या है, ये भी श्रोताओं को समझाइए। और उसके बाद ये भी बताइए कि ये दौर जो रहता है, राउंड जो होता है, ये राउंड का महत्व क्या है, इसका क्या अर्थ है?
देखिए इसका कैसा है कि एनएसओ के अंतर्गत ये दोनों डाटा प्रोसेसिंग सेंटर यानी समंक विधायन केंद्र या प्रभाग बोल सकते हैं, जो हेडक्वार्टर होता है उसको प्रभाग में होता है, और फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, ये दोनों एनएसओ के अंदर में कार्य करता है। अब इसका जो मेन फंक्शन कैसा होता है कि ये जो एक मंत्रालय के अंतर्गत एक वर्किंग ग्रुप होता है जो जिसमें जाने माने अर्थशास्त्री सांख्यिकी जो सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, और जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जो ये होते हैं उनकी अध्यक्षता में ये वर्किंग ग्रुप काम करता है, और भारत सरकार के विविध मंत्रालयों द्वारा विविध विषयों पर जानकारी की मांग पर ये वर्किंग ग्रुप इस विषय को प्राथमिकता देना है और मुख्य बिंदुओं को सुझाव करता है, और इसके बाद ही ये जो एक वर्किंग ग्रुप का एक सुझाव आने के बाद किस सब्जेक्ट पे हमको सर्वे करना है, उसके बाद एक इस एनएसओ के अंडर में सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन होता है, उसमें इस पूरे शेड्यूल या जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक जो पहले उसको शेड्यूल के रूप में अनुसूची के रूप में कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज अनुसूची कहते हैं, जो पहले पेपर शेड्यूल में फील्ड में डाटा कलेक्ट किया जाता था, अभी एक प्रश्नावली के रूप में ऑनलाइन डाटा कलेक्शन हो रहा है। तो ये एसडीआरडी एक रूपरेखा या प्रश्नावली एक बनाती है, उसके पश्चात ये प्रश्नावली बनाने के बाद ये प्रश्नावली फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में भेजी जाती है, और फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में जो वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जिन्हें अभी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कहा जाता है, वो फील्ड में जाके ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करते हैं। पहले पेपर में डाटा कलेक्शन किया करता था, पर अभी जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई फास्ट सर्वे का रिपोर्ट आने के लिए, अभी ये ऑनलाइन डाटा कलेक्शन किया जाता है, और ये जो डाटा सब कलेक्शन होने के बाद ये जो उसका जो डाटा है ये डाटा प्रोसेसिंग सेंटर यानी डाटा समग्र विधान विभाग केंद्र में इसको डाटा को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी जाता है। प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है कि ये जो डाटा फील्ड से कलेक्ट किया है, ये रॉ डाटा होता है, उसमें बहुत सारी खामियां होती है, एक स्क्रूटिनी एक रूप में ये करते हुए ये डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में इसका एक प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग, जैसे अभी हरीश देशमुख जी ने कहा कि ये डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में खुद काम करते थे, तो इसका जो मुख्यालय है वो डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन जो है मुख्यालय है वो कोलकाता में है, जो हमारे एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये आईएसएस कैडर के अधिकारी होते हैं, वो यहाँ हमारे अभी फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है श्री सुप्रियो मुखर्जी सर है, जो हमारे पूरे इस डीपीसी डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन के प्रमुख है, और उसके बाद अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे हमारा नागपुर एक सेंटर है, दिल्ली एक सेंटर है, गिरिडीह जो झारखंड में एक जगह है वहाँ पे भी एक हमारा बहुत बड़ा सेंटर है। ये झारखंड में जो गिरिडीह सेंटर है ये बहुत ख्याति है, जहाँ पे जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनका जो ससुराल हुआ करता था तो वहां पे भी एक सेंटर बनाया गया था। उसके अलावा एक बैंगलोर और अहमदाबाद में भी ये डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है। और इस डाटा प्रोसेस हर एक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का जो प्रमुख होता है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल होता है और उसके अंदर में ISS कैडर के डिफरेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कार्य करते हैं। और उसके उनके नीचे ये में पहले यहाँ पे EDP कैडर हुआ करता था जिसमें डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के रूप में लोग कार्य करते थे। जो अभी फिलहाल में जो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 है उसको जूनियर सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के रूप में कहा जाता
है। दौर जो होता है ये राउंड आते हैं उसके बाद में हम हमारी कार्यालय में एक्सपर्ट लोग बुलाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट वगैरह। ये दौर जो होता है राउंड, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए 2-3 मिनट में, ये दौर क्या प्रकार से होता है और ये कैसे प्लानिंग में काम करता है।
देखिए ये दौर ऐसा होता है जिसको राउंड कहते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर विषय को लेके वर्किंग ग्रुप हमको सजेस्ट करता है, कोई मंत्रालय सजेस्ट करता है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ सर्वे को करने के लिए जो ऐसे हर 5 साल बाद उसका सर्वे होता है तो वो सब्जेक्ट दिया, तो एक पर्टिकुलर एक पीरियड दिया जाता है, 1 साल का पीरियड, उसको राउंड या दौर कहा जाता है। तो ये राउंड में वो पूरा सब्जेक्ट के ऊपर सर्वे किया जाता है। और ये जो सर्वे होता है ये हमारा स्टैटिस्टिकल में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है बहुत सटीक होता है। क्योंकि जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने जो सांख्यिकी का जो एक आधार रचा है, एक स्टैटिस्टिक्स जो रखा है जिस सैम्पलिंग बेसिस पे वो सर्वे किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे लिए बहुत कार्य करता है और जिसका रिजल्ट बहुत सटीक आता है। जैसे उन्होंने विविध ग्रुप्स को लेके वो सर्वे किया जाता है, ऐसा नहीं कि आजकल जो डिफरेंट सर्वे हम देखते हैं इलेक्शन सर्वे तो उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता, पर ये जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे में जो स्टैटिस दौर में जो सर्वे होता है इसको रैंडम सिलेक्शन के बेसिस पे उसका सर्वे किया जाता है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये दौर जो कहा जाता है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए एक एक टाइम पीरियड दिया जाता है वो दौर कहा जाता है उसको।
तो शानदार जानकारी दी आपने। श्रोताओं के अंतिम प्रश्न में आपको पूछ रहा हूँ, सांख्यिकी उत्थान में आज की सांख्यिकी विभाग का क्या महत्व है, ये भी श्रोताओं को थोड़ा समझाइए प्लीज।
अभी आजकल के इसमें आज के ये सांख्यिकी जो विभाग है उसका बहुत बड़ा उद्यान। अब जानते हैं कि 2015 में जब यूनाइटेड नेशन ने एक पूरे वर्ल्ड को लेके एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कुछ सभी को समांतर एक रूप में लाने के लिए उन्होंने कुछ विषय को लेकर 17 विषय है, वो 17 विषय को लेकर एक समान रूप से सभी देशों में कार्य करने के लिए ये सांख्यिकी के ये किया है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। हमारे भारत में भी 2015 से ये लागू हुआ है और अगले 15 वर्ष यानी 2030 तक पूरे वर्ल्ड भर में सांख्यिकी का जो ये डेवलपमेंट डिफरेंट विषय है इसको अचीव करने के लिए, इसको लोगों को एक समान स्तर तक लाने के लिए है। तो हमारे भारत में भी सांख्यिकी विभाग के माध्यम से ही ये जो सर्वे करके कहाँ कहाँ हमारी कुछ कमियां हैं, कहाँ उसको हमको उसको कहाँ महत्व देना चाहिए, ये हमारी सांख्यिकी विभाग का महत्वपूर्ण रोल है और ये आगे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला है। ये जो कि यूनाइटेड ये जो बड़ा ये प्लानिंग है नीति आयोग के साथ जो यूनाइटेड नेशन का जो प्लानिंग है ये इसमें हमारा सांख्यिकी विभाग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है।
बिल्कुल सही बात है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चा, सामाजिक एवं आर्थिक सूचनाओं के जुड़े रिपोर्ट पेश करता है और सर्वेक्षण कराते हैं सांख्यिकी के, और ये सब काम होते हुए देखिए सांख्यिकी विदित प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून को हुआ था और सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों में काफी अहमियत रखती है। ये इसके बिना कोई बड़ा सर्वेक्षण, रिसर्च, मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए सांख्यिकी संबंध में जागरूकता पैदा करना, लोगों में जागरूकता 2007 में उनकी जन्मतिथि पर फैसला लिया गया है और 29 जून से ये 1893 में कोलकाता में जन्म प्रेसिडेंसी का जो हुआ था भौतिकी में ऑनर्स किया उन्होंने, शिक्षा उच्च प्राप्ति की है। इस नमूने सर्वेक्षण में शामिल कर प्राप्त निर्देशों के आधार पर विस्तृत योजनाओं का आकार दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रशांत भगत जी जो सम्मक विधायक सहायक ग्रेड वन आज भी है और बड़ी हमारे नेशनल सैंपल सर्वे में सभी एक्टिवली काम करती है, उनके साथ भी हिल जीवकर सभी लोग काम करते हैं। तो जीवकर की पत्र से भी आपसे बताऊंगा क्योंकि आप भी यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के अपने संयोजक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो जानकारी आपको इस संबंध में दी है आप भी अपने टिप्पणी विषय उपलक्ष्य में कर सकते हैं। जीवकर जी
सर जी नमस्कार।
नमस्कार।
जैसा कि आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी आज सांख्यिकी दिवस के अवसर पर मोबाइल वाणी के श्रोताओं के साथ साझा की, ये बहुत अच्छी बात है कि आज मोबाइल वाणी के मंच पर एक नहीं दो दो अतिथि, एक तो आप स्वयं सांख्यिकी विभाग से उपस्थित होकर मोबाइल वाणी के श्रोताओं को आपने एक बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी दी, साथ ही साथ जो हमारे नागपुर के मोबाइल वाणी के प्रतिनिधि है और इसके साथ वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय सचिव भी है और उनका भी इसी क्षेत्र में कार्य रहा, आप दोनों अतिथियों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी दी बहुत ही लाभप्रद श्रोताओं के लिए सिद्ध होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सांख्यिकी विभाग है समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए किस तरह कार्य करता है और इसके जनजागरण के लिए सांख्यिकी विभाग की क्या कार्य योजना है।
अभी जैसे ये कहा जा सकता है कि जैसे आपने पहले भी मैंने कहा था कि ये जो सांख्यिकी विभाग का जो रोल होता है ये हर एक वर्ग के हर एक तबके के लोगों के लिए ये काम करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो 5 ईयर प्लानिंग्स होती है वो एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए नहीं होते हुए हर एक तबके के नीचे से नीचे स्तर तक के लोगों को किस तरीके की सुविधा मिलनी चाहिए और उसमें उनका कैसा है उनका योगदान लिया जाता है और उसका उन्नति कैसे की जा सकती है, इसके लिए हर एक लेवल के लोगों के लिए ये सांख्यिकी जो एनएसएसओ में डाटा कलेक्शन किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये सांख्यिकी विभाग के माध्यम से,
और इसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है जैसे मेरे
ख्याल पंचवार्षिक योजना जो है वो इसी के माध्यम से बनाई जाती है। हाँ बोलिए
सर जी। जैसा कि आज राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है और सांख्यिकी
29 जून कल है,
सांख्यिकी के जो जनक है उनकी जयंती भी है, तो मैं आज इस अवसर पर मोबाइल वाणी के श्रोताओं को आप इस कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहोगे।
इस कोरोना काल में जो अभी स्थिति आज हम देश में देख रहे हैं, जैसे दूसरी लहर हमने देखी है फेस की है, पहली लहर को भी देखा है, लोगों को एक अपने आप को बचाते हुए एक जो सरकार का जो ये है कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क पहने, ये जो एक गाइडलाइन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ने दी है उसको फॉलो उसको पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस के साथ ही हम अपने आप को इस कोरोना से बचाया जा सकता है। और मैं इस माध्यम से एक लोगों को खासकर ग्रामीण के लोगों को ये आह्वान करना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन भारत सरकार ने शुरू किया है वो वैक्सीनेशन में आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन ही हमारे लिए बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। तो ग्रामीण खासकर ग्रामीण के लोगों ने वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, ये मेरा वैयक्तिक विचार भी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच से आपने कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर जनजागरण के ये जो आपने संदेश दिया यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद।
धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार।